बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में, बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में, जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में, बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में, बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में, जी कर
ओम शांति। हमारे जीवन का संसार कौन है? बाबा जीवन दाता, जो हमें नव जीवन प्रदान किया है। कदम कदम पर आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है, सावधानियां मिलती हैं, श्रीमत मिलती है, उसको हम कितना अमल में लाते हैं, नहीं लाते हैं, फिर बार बार फिर बाबा हमको रोज मीठे बच्चे कह कह के हमारे मन की धरनी को नरम कर देते हैं। जो धरनी कठोर हो गई है, ज्ञान को अमल में लाने में मुश्किल लगता है, योग के अभ्यास मुश्किल लगते हैं, लेकिन बाबा के महावाक्य सुनते 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 जैसे मन पिघल जाता है, मन जैसे नरम हो जाता है, दिल जैसे नरम हो जाता है, अपने आप ही फिर अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ हमको ये पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे संसार में अगर कोई किसी को पुरानी बीमारी हो, क्रोनिक हो एकदम, तो उसे शफा प्राप्त करने के लिए, उसे राहत पाने के लिए लंबा समय लगता है, फिर डॉक्टर परहेज भी बताता है, जितने समय का कोर्स होता है उतना समय दवाई खानी होती है। तो हम सब आत्माएं भी जन्म जन्मांतर से 63 जन्मों से बीमार हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, विकारों की बीमारियां, अपवित्रता की, बहुत सारी अशुभ भावनाएं भरी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अपने प्रति घृणा का भाव रहता है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बहुत गहरे तल पर चली गई हैं। अब उनसे राहत प्राप्त करवाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं जीवन दाता आया हुआ है, जो हमको समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, समय समय पर हमें इतनी अच्छी अच्छी सावधानियां देते हैं कि पुरुषार्थ करना फिर सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता है। तो आज जैसे बाबा ने कहा, तो ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है? हाँ जी, आज की मुरली है ना, ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है? तपस्या और पवित्रता और पवित्र बनना व्रण है जी। हाँ जी, क्या? हाँ, वरदान में है, मुरली के अंदर नहीं, वरदान में है। तुम बच्चों का ऑक्यूपेशन है, धंधा है, व्यवसाय है, निराशावादी को आशावादी बनाना। तो सबसे पहले तो हमें स्वयं को आशावादी बनाना चाहिए, अपने आप को ही, अपने प्रति होप पैदा करना चाहिए कि हाँ, हम ये पुरुषार्थ कर सकते हैं। नहीं तो बाबा की मुरली में ऐसे शक्तिशाली शब्दावली होती है कई बार कि लगता है ये बड़ी दूर की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। तो पहले स्वयं के प्रति हमको आशावादी बनना है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, किसी मनुष्य ने नहीं पकड़ा हुआ है। बाबा को हमारे प्रति इतनी श्रेष्ठ आश है, शुभ आश है, उम्मीदें हैं। बाबा इसलिए कहते हैं, तुम सफलता के सितारे हो, कल्प कल्प तुम बच्चों ने सफलता अर्जित की है, सफलता प्राप्त की है। तो जब स्वयं भगवान कह रहा है कि तुम सफलता मूर्त हो, कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, तो विश्वास स्वयं पर भी करना चाहिए ना। संसार में साधना करने के लिए तो कितना प्रयास करते हैं, गुफाओं के अंदर जाते हैं तपस्या करने के लिए, अनेक व्रत रखते हैं। बाबा ने तो हम सबको इन झंझटों से छुड़ा दिया, एकदम सहज कर दिया, और सहज कर दिया इसलिए हम ठंडे पड़ जाते हैं। थोड़ा कठिनाई वाला होता है ना, तो है जी, बाबा सहज मिला है, इसलिए पुरुषार्थ भी हम सहज ही कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, दो प्रकार के मेरे बच्चे हैं। कौन से हैं? एक है पुरुषार्थी तपस्वी है, दूसरा सफल तपस्वी है। तो तपस्या हमारे जीवन की नेचुरल नेचर हो जाए, और तपस्या की परिभाषा भी बाबा ने अलग अलग तरीके से बताई, केवल याद में बैठना ही तपस्या नहीं है। तो क्या है तपस्या फिर? बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, अनेक लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो वहां उनके साथ डीलिंग करना वो भी एक साधना है, तपस्या है। उनके साथ हम व्यवहारिकता में आते हैं, कैसे उनसे बोलना है, व्यवहार करना है, लेन देन कैसे करनी है, अगर वो भी हम श्रीमत प्रमाण मर्यादा पूर्वक करते हैं तो वो भी एक साधना का अंग है, वो भी एक तपस्या है। और हम तपस्या में बैठे हैं और मन बुद्धि भटक रहा है इधर उधर, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, तो तपस्या कहाँ हो? तो भंग होगी तपस्या। और जो व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है और उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बैठा नहीं हुआ है लेकिन व्यवहारिकता अच्छी है, मीठे बोल हैं उसके, दूसरों को आशावादी बनाने बोले वाले बोल हैं, कल्याणकारी बोल हैं, राहत देने वाले बोल हैं, उमंग उत्साह देने वाले बोल हैं, तो कौन सा तपस्या वाला अच्छा हुआ? जो वो वाला या बैठा वाला? वो वाला अच्छा हुआ। तो जो भी हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसका परिणाम हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। नहीं तो लंबे समय से देखा गया है, लंबे समय से ज्ञान में तो चलते हैं, लेकिन जो संस्कारों का बदलाव होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि हम ज्ञान को ऊपर ऊपर से सुनते हैं केवल, उसको समझ नहीं पाते इतना। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ। तो वो एक दिन की बात नहीं है, लंबे समय से अपने ऊपर नजर रखने की जरूरत है। अगर हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा, तो सिद्ध करता है कि हम दूसरों को परिवर्तन करने की अपेक्षा रख रहे हैं, हम दूसरों को देख रहे हैं कि हम कितना परिवर्तन हो रहा है सामने वाला, लेकिन अपना नहीं सोच रहे हम। इसलिए ना हम परिवर्तन होंगे, ना दूसरों को परिवर्तन करने के लिए शुभ भावना रख पाएंगे। तो सारा काम जो हमको स्वयं पर करना है। बाबा ने क्या कहा, तपस्या वर्ष एक लिफ्ट है, लिफ्ट के गिफ्ट है वो, और गिफ्ट में कोई खर्चा नहीं होता है। तो ज्ञान भी हमको ये ऐसा मिला, ये ज्ञान जैसे हमारे शास्त्रों में समा जाए, गिफ्ट के रूप में मिला है। और कोई कीमती गिफ्ट देता है तो उसको हम कितना संभाल के रखते हैं। तो सारे कल्प में हमको ये भगवान का जो गिफ्ट मिला है ज्ञान, ये जीवन गिफ्ट मिला है, तो इसका कितना सदुपयोग करना चाहिए। कदम कदम पर दृष्टि वृत्ति कृति में कैसे हमारी सबके साथ व्यवहारिकता होनी चाहिए, बड़ा सूक्ष्म रूप से। जैसे जैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे तो अपनी ही कमी कमजोरियों को, सूक्ष्म कमी कमजोरियों को निकालने की सूक्ष्म शक्ति हमें अनुभव होगी, अगर हम स्वयं पर नजर रखते हैं। नहीं तो कमी कमजोरियां रहती रहती रह जाएंगी, अगर यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है, यथार्थ याद नहीं है। तो बाबा कहते तुमको निराशावादी को आशावादी बनाना है, तो सबसे पहले हमें स्वयं के प्रति आशावादी, सच्चे सेवादारी वही हैं जो पहले स्वयं के प्रति आशावादी दृष्टिकोण बना करके। नहीं तो कभी कभी स्वयं डिसहार्टेड रहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, जिसको करना करे, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत आसान है पुरुषार्थ। संसार में भक्ति करते थे उसमें मेहनत लगती थी इतनी, भले वो धक्के खाना लगवा थी, लेकिन जो रोजाना दिनचर्या में शामिल था उसमें कितना सुख मिलता था। तो इस ज्ञान में क्यों नहीं इतना सुख, इसमें तो ये ओरिजिनल प्योर माल है, ये एकदम शुद्ध है, तो इसमें कितना सुख भासना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस ज्ञान को हमने अपना बनाया नहीं है। अभी तपस्या का आधार भी ज्ञान है, बिना ज्ञान के तपस्या करेंगे तो वह भी फलीभूत नहीं होंगी, उसमें फिर माथा भारी भारी होगा। तपस्या माना बाबा से बातें करना, बाबा को याद करना माना हमारा उससे कनेक्शन जोड़ना। एक दो आपस में बातें करते हैं अर्थात एक दो को याद कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो सबसे आसान काम है योग, याद की यात्रा सबसे आसान है जिसको हम मुश्किल समझते हैं। लेकिन तब जब ज्ञान को भी हम आसान बना लेंगे, अपने जीवन के संस्कारों में उसको समाहित कर देंगे, तो याद भी सहज हो जाएगी। तो आज बाबा ने किसको देखा, हम बच्चों को देखा। किसको देखा मुरली में, तो बस भी बच्चों को। दो प्रकार के बच्चे देखे, कौन से, एक शाकाहारी दूसरे आकारी, साकारी और आकारी, ठीक है, एक साकारी और आकारी। साकारी अर्थात जो बाबा से सामने सन्मुख मिलने आए हैं वो, और दूसरे आकारी हैं। और उनमें से भी दो बच्चे प्रकार कौन से देखे, सफल तपस्वी और पुरुषार्थी तपस्वी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता ये क्या है, नहीं तपस्या ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तपस्या में सुख समाया हुआ है, तपस्या में ही अतीन्द्र सुख की भासना आती है, और तपस्या में ही हम सब झंझटों से मुक्त हो जाते हैं। तपस्या अर्थात किसी को याद नहीं करना है, केवल अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। ऐसा नहीं केवल हम उसमें बाबा को याद करो, नहीं, कभी कभी अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, देखो मैं आत्मा कितनी शांत हूं। जो बाबा ने आज अमृत वेले भी जो 4:30 बजे बाबा के महावाक्य उच्चारित होते हैं ड्रिल के रूप में, तो बाबा ने क्या कहा कि परम धाम में अपने स्वरूप के देखो। तो बस केवल उसमें कुछ देर तो उसी को देखते रहे अपने आप को, मैं कितना शांत आत्मा हूं, कितनी शांति समाई हुई है। जैसे बाबा शांति का सागर एकदम शांति से बैठा हुआ है परम धाम, तो मैं आत्मा भी उसके पास ही बैठी हूं, दूसरा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ओरिजिनल स्वधर्म वही है, हम अपनी सीट को छोड़ के नीचे चले जाते हैं। हमें बाबा इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठाता है, अपने पास बिठाता है। भगवान मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर पकड़ के अपने आप पास में बिठा ले तो उसको कितना नशा रहता है। कोई छोटा मोटा मिनिस्टर भी उसके साथ फोटो खिंचाने कैसे जाते हैं। और बाबा तो हमको अपने साथ ही रखते हैं। मुरली के लास्ट सेंटेंस था ना, कौन सा था, बाप को अपना साथी बनाओ। तो बाबा तो हमको अपना सिंहासन भी छोड़ देता है कि बैठो मेरे साथ में बैठो, जैसा मैं हूं वैसे तुम बच्चे हो, तुम बच्चे मेरे समान हो। अब इतनी ऊंची बाबा स्मृति दिला रहे हैं, इतना ऊंचा सम्मान दिला रहे हैं, इतने ऊंचे सिंहासन भी बिठा रहे हैं, उसको भी छोड़ के हम नीचे उतर आते हैं। तो बाबा का हमारे प्रति कितना प्यार है, लेकिन थोड़ा अटेंशन देने की बात है। थोड़ा सा अटेंशन देंगे, धीरे 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 हमारे संस्कार बन जाएंगे। और जब एक बार संस्कार बन जाए तो फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस बैठे और सीधा सी आसन पर विराजमान हो गए। जैसे ऑफिस में जाते हैं, घर से कुर्सी पर बैठे तो जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक उठते नहीं हैं। तो ऐसे जब हम योग में बैठे हैं, सियासन पर बैठे हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, दो घंटा, जब तक काम पूरा नहीं हो तो मन बुद्धि इधर उधर जाएगा ही, क्योंकि वहां कमाई हो रही है। और जहां कमाई होती वहां सुस्ती आती है कोई नहीं। और जो व्यक्ति कमाई करता है तो कमाई के लिए पहले प्लानिंग करता है, बिना प्लानिंग थोड़ा कमाई करता। जो भी बिजनेसमैन होते हैं तो प्लानिंग करते हैं उसकी, बिना प्लानिंग थोड़े नहीं करते। बाबा कहते हो तुम संसार में सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, क्या देते हो और क्या लेते हो, काखपान देते हो और लेते क्या हो, पूरे विश्व की वाइशाई ले लेते हो, और कितना आसान काम है, सिर्फ मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे याद करो, कितना सहज बताया दिया। जितना हम बाबा के साथ बैठे रहेंगे उतना हमारी सारी जो ओरिजिनल हमारे गुण हैं, जो धारणाएं हैं, वो अपने आप जीवन में आने लगेंगी, है ना। जिसके साथ जो रहता है उसके लक्षण अपने आप ही आने लगते हैं, तो वो सारी पवित्रता हमारे में वो दिखाई देने लगेगी, वो परिलक्षित होने लगेगी। जैसे बाबा ने क्या बताया कि सच्चे वैष्णव अर्थात क्या, जो बुराई को भी टच नहीं करे, अपवित्रता को भी टच नहीं करे। संसार में तो है स्थूल, तुम बच्चों का है सूक्ष्म, तो कितनी सूक्ष्म परिभाषा है। अब इस धारणा से मैं इस धारणा के लिए संसार तो कर नहीं पाया, साधु सन्यासी भी इतने कर पाए, फिर भी वो लगे हुए हैं, उनकी भी कमाल है, छोड़ते थोड़े नहीं अपनी साधना को, कितने घंटों घंटों साधना में बैठे रहते हैं, हालांकि भगवान को यथार्थ रूप से जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी साधना देखो कितनी उनकी प्रचंड होती है। और हम बच्चों को तो जानते भी हैं, फिर भी साधना कितनी तेज होनी चाहिए, लेकिन कितनी स्लो हो जाती है। पुरुषार्थी तपस्वी बन जाते हैं, सफल तपस्वी के बजाय पुरुषार्थी तपस्वी बन जाते हैं। तो त्याग तो वास्तव में संसार वाले कितने करते हैं, हमारा तो त्याग भी कुछ नहीं है। क्या त्याग किया हम बच्चों ने, वो वाला त्याग ही किया जो हमको नुकसान दे रहा था, जो हमको अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, वही तो त्याग किया। तो ये जीवन जो है तपस्वी जीवन है। तो बाबा कहते तुम बच्चे हो सच्चे वैष्णव, अपवित्रता का अंश मात्र भी हमारे में ना रहे। लेकिन वो ऐसा एकदम नहीं होगा, लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद वो अनुभूति होने लगी। लंबे समय के बाद स्वराज्य की सीट पर सेट रहेंगे तो कर्मेंद्रिय हमारे वश में रहेंगी। पिछले संडे की मुरली थी, चार प्रकार की सत्ताएं, कौन सी सबसे पहले कौन सी थी, धर्म सत्ता, फिर राज्य सत्ता, तीसरी और चौथी और पांचवी चार ही थी ना, श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, तो स्वराज्य की सत्ता। तो स्वराज्य अधिकारी हमको बन के रहना है, हाँ जी, तीसरी विज्ञान की सत्ता। तो वो ही बाबा ने विज्ञान के बारे में बताया। तो वर्तमान समय हमको देखना, मैं स्वराज्य के स्वयं के सिंहासन पर कितना समय स्थित रहता हूं। बाबा कहते हैं अगर हमारे वो तपस्या यथार्थ है, उसका परिणाम तपस्या अर्थात एक बाप की याद में लगन में मगन, तो हम कितना समय रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि बैठे बस बैठ के उसके लगन में मगन हो जाए, नहीं, उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अगर हम ज्ञान में पढ़ रहे हैं तो ज्ञान भी एकाग्रता पूर्वक मुरली पढ़ें, चिंतन कर रहे हैं तो वो एकाग्रता पूर्वक करें, सेवा कर रहे हैं बाबा की तो वो एकाग्रता पूर्वक करें, धारणाएं हैं तो भी हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। सारा कुछ छोड़कर खाली याद में बैठ जाओ, नहीं होगा वो, कभी करके देखो एक दिन, मन रुकता है उस समय। लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, चारों सब्जेक्ट इक्वल चाहिए, हर सब्जेक्ट में बाबा कहते इक्वल मार्क्स चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में नंबर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जैसे आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से गहरा रिश्ता है, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट में हमको एक्यूरेट बनना है। याद तो हमारी नेचुरल नेचर बन जाएगी जब ज्ञान हमें के हमारे संस्कार बन जाएंगे, जो भी दिव्य गुण हैं वो हमारे संस्कार बन जाएंगे। और वो बनेंगे तब जब पहले ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। ज्ञान का मनन चिंतन करना बड़ा अनिवार्य है, और ज्ञान का मनन चिंतन करने की बड़ी सहज विधि है, मुश्किल नहीं है। बोलते हैं ज्ञान का मन निश्चिंत हो तो होता ही नहीं है। दूसरी बातें कैसे चिंतन हो जाती हैं, कभी घर में फंक्शन में आते हैं, कहीं शादी हो या कोई दूसरा फंक्शन हो तो वहां तो पूरा दिन बातें करते हम थकते ही नहीं है। तो ये बाबा से बातें करने, बाबा के साथ बैठ के फंक्शन करो, यहां क्यों थक जाते हैं? क्योंकि उसके जैसा बनना पड़ेगा तो हमारी फ्रिक्वेंसी आपस में मैच होगी। उसके जैसा बनेंगे तो उसकी बात हमको अच्छी लगेगी, हमारी बात भी वो तभी सुनेगा जब हम उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो पवित्रता इस मुरली में सारा जो अधिकतर अगर देखा जाए तो तपस्या का आधार पवित्रता है। और प्योरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात क्या बताया बाबा ने, मन वचन कर्म स्पष्ट रूप से दूसरों को भी अनुभव हो और हमें भी अनुभव हो, दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, कर्म में, वो स्पष्ट रूप से हमको अनुभव हो। और ये धीरे 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 बढ़ती जाती है। लेकिन क्या है, हम लंबे समय से ज्ञान युग में तो चलते रहते हैं लेकिन हमको स्वयं को महसूस कम होता रहता है, क्योंकि सामने वाला कोई गुणगान नहीं करता, महिमा नहीं करता है। और कभी कभी हमारे मुख से ऐसे वैसे बोल निकल जाते हैं तो लगता है कोई पुरुषार्थ तो ठीक हो ही नहीं रहा है। नहीं, पुरुषार्थ कभी भी निष्फल नहीं जाता है। ये तो अगर हमको पुरुषार्थ का थोड़ा अहम हो जाने तो सारी की कमाई चट हो जाएगी। इसलिए तो बाबा ने छत्रछाया रखी है कि जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सारा सूक्ष्म में जमा के खाते में हो रहा है जमा। कितनी बड़ी बात है, सब घर में, अभी आप घर से आए हैं सेवा करने के लिए तो सब घर में छोड़कर आए हैं, इतनी छुट्टी करके सेवा कर रहे हैं बाबा की, तो ये कमाई कम है क्या? कितनी बड़ी कमाई है। बाबा के यज्ञ में दधीचि ऋषि मिश्र अपनी हड्डियां सफल कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, ये कम बात है क्या? हम यहाँ आपस में भी बैठे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ये कम बात है क्या? ये भी किसका आशीर्वाद है, किसकी कृपा है? तो बाबा का प्यार ही तो है तभी हम ऐसे चर्चा कर पा रहे हैं, नहीं तो संसार में कितने आकर्षण है, कितने प्रकार की चकाचौंध है। तो बाबा की कृपा हर समय हमारे ऊपर बनी हुई है। अगर हम व्यर्थ से मुक्त है माना, बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हाँ, थोड़ा अटेंशन तो रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बाबा सीधा हाथ रख देगा कि हाँ व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। और व्यर्थ से हमारा वैराग्य है, उधर तरफ हमारी बुद्धि नहीं भटक रही है, तो माना बाबा का हमारे ऊपर प्यार है, उसकी कृपा दृष्टि बनी हुई है, उसकी शक्ति हमको मिल रही है जो हम व्यर्थ से किनारा रखने के लिए अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। और पर्सनैलिटी का क्या अर्थ बताया? हाँ, पर्सनैलिटीज अर्थात व्यक्तित्व। जो संसार में बड़े बड़े पर्सनैलिटी होती है अर्थात जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वो छोटी मोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर प्राइम मिनिस्टर छोटी मोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट करे तो देश को कैसे चलाएंगे वो? तो बाबा कहते तुम बच्चे तो विश्व के आधार में हो, तो विश्व के मालिक हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो छोटी मोटी बातों में क्यों हमारा ध्यान जाना चाहिए? लेकिन होता क्या है, छोटी मोटी बातें तो ध्यान चला जाता है। बाबा कहते हैं ना, सारा मन पर बोझ ले लेते हो, जिम्मेवारी को भी अपना समझ लेते हो, तो छोटी छोटी बातें जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है क्यों हम उधर जाते हैं? हमें पता है इस तरफ ध्यान देने से हमको कितना नुकसान हुआ आज तक, वो जानने के बाद भी हम फिर आग में हाथ डाल रहे हैं, हाथ जल रहा है, पहले दिन में व्यर्थ छोड़ दिया, दूसरे दिन में फिर हाथ डालते हैं, फिर व्यर्थ को पकड़ रहे हैं हम। कितने संस्कार उसके व्यर्थ के संस्कार पक्के हुए। तो ऐसे नए संस्कारों का निर्माण, नए संस्कारों की आदत डालनी पड़ेगी। और वो आदत कहां से डालनी है, कहां कैसे आदत डालेंगे? जो बाबा के महावाक्य रोज के, लिखो पढ़ो, उनसे प्यार करो, मुरली से बात करो। जैसे सामने बाबा मुरली से झांक रहा है, उधर से वो कह रहा है और इधर से मैं बात कर रहा हूं, बाबा को चिट्ठी लिखो, पत्र लिखो, उसको मन ही मन बात करो उससे। क्योंकि मन हमारा जो है, जब तक इसको हमने पूरी तरह से प्योर नहीं किया तब तक ये भटकता रहेगा। बहुत सारी बातें जन्म जन्मांतर की, अनेक जन्मों की भरी पड़ी हैं जो हमको पता भी नहीं है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में चलने के बाद तो ऐसे ऐसे तूफान आएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, माया ऐसे ऐसे आएगी। परसों की मुरली था, जितना मर्जी याद कर लो लेकिन माया तुमको याद नहीं करने देगी। परसों की मुरली में कल था, बाबा ने वार्निंग देते हैं बच्चों को, कौन सी वार्निंग दी? नहीं, ठीक बोला बीच में किसने, हाँ, बचपन के दिन बुलाना देना। क्यों? क्योंकि बचपन में तो हम सबको ऐसे महसूस होता जैसे बाबा उंगली पकड़ के चला रहा है ना, दो चार साल तो बड़ा नशा रहता है, क्योंकि बाप बाप पकड़ के चलाता रहता है। अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, एकदम उड़ते रहते हैं, सपने भी अच्छे आएंगे, सेवा भी खूब करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, ऐसे लगता पहाड़ को उठा के फेंक दें। और परिवार का भी खूब प्यार मिलता है दो चार साल के बाद, क्योंकि स्वर्ग के सपने दिखते हैं सारे। पुरुषार्थ तो बाद में चालू होता है, तीन चार साल के बाद पता चलता है, क्योंकि वो जो मुरली में बातें कोर्स में थोड़ा बताई होती हैं कि माया भी बैठी है मुंह खोल के आगे। बाबा तो पहले उंगली पकड़े के रास्ते पर ले जाएगा, और आगे जो राक्षस बैठे होते हैं बड़े बड़े, और वो कहाँ बैठे, वो तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, पता चलता है। पहले तो पता बाबा कहते तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते तो क्या पता चलता है अंदर में, इतने बड़े बड़े आसुर भी हमारे अंदर बैठे हुए। तो फिर क्या गिल्ट कॉन्शियस पैदा हो जाती है कि बाबा तो मुझे देवकुल की महान आत्मा कह रहे हैं, और लगता तो नहीं एक भी लक्षण है भी उसमें। फिर धीरे धीरे क्या होता है, संकल्प हमारे ढीले हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, दूसरों को देखना चालू कर देते हैं। फिर दूसरों की बुराइयां भी, दूसरों के अवगुण भी हम मन में रखते हैं, और उनका भी चिंतन चालू कर देते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, उस सब्जेक्ट को हम पढ़ते रहें तो पास कैसे होंगे। अब एडमिशन लिया हमने बीए की, और पढ़ाई कर रहे हैं मैट्रिक की, तो पास कैसे होंगे। हमको एडमिशन में लिया कि बिशप के महाराजा महारानी बनना है, बिशप के मालिक बनना है, और पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं, ये ऐसा ये ऐसी है, फलाना ऐसा फलाना ऐसे है। अब बिशप महाराजा ने बैठ के ऐसी बातें करें तो क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। जो हमारा सब्जेक्ट है उसी अनुकूल हमारे दिनचर्या, हमारा जीवन, हमारी व्यवहारिकता रहे तो वो ही शो होता है। जो सब्जेक्ट हमारा है ही नहीं है, हम उस तरफ जाएं क्यों। संसार में भी दुख का कारण क्या है, अपनी समस्याओं को छोड़कर दूसरे की समस्याओं का बखान करते रहते हैं। रिश्तों में दूरियां क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों को पकड़ा हुआ है। इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है, इसको ऐसे बोलना चाहिए था। इन्हीं छोटी छोटी बातों में हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है। बाबा ने हमको कहा तुम बच्चे हो विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तुम पूर्वज हो। अब घर में बुजुर्ग आदमी होता तो बच्चा क्या करता, उसको उससे साथ खेलता भी है, कुछ बुरा भला भी कह देगा, लेकिन उसको कोई मन पर लेता ही नहीं बात को। तो हम संसार की पूर्वज आत्मा है, पूरे संसार का कल्याण करने की जिम्मेवारी बाबा ने हमको दी है। और हम छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाएं तो क्या कहेंगे, शोभेगा वो। तो जीवन में परिस्थिति तो आएंगी, माया आएगी अलग अलग रूप से, लेकिन हमको टच नहीं करना उनको पकड़ के नहीं बैठ जाना, समाधान करना। पिछले था ना वरदान में मुरली, फुटबॉल आएगा, किक मारने को मन तो होता ना सबका, उसको पकड़ के थोड़ा बैठ जाएंगे। तो माया भी फुटबॉल की तरह आती है, उसको किक मार दो, अर्थात उसमें हम ज्ञान का अच्छा चिंतन करें। तो पर्सनैलिटीज अर्थात जो जिसके विचार विश्वव्यापी विचार हों, विश्व कल्याण के लिए विचार हों, छोटे मोटे विचार नहीं। बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात क्या, मधुबा निवासी, उड़ीसा निवासी, महाराष्ट्र निवासी, पंजाब निवासी, गुजरात निवासी नहीं हो, कौन है, मधुबा निवासी है। अगर हमको ये भी स्मृति रहे तो बहुत सारी हमारी जो सूक्ष्म कमी कमजोरियां वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। नहीं तो होता क्या है, जब हम घर में होते हैं तो मधुबन याद आता है, मधुबन में होते हैं तो घर को याद कर रहे हैं, सब माता को अनुभव होगा। इधर फोन से तो कहीं के देखने में आता ही है, यहां है माना यहां का ही ठीक है। अर्जेंट अगर फोन भी आता है तो दो मिनट में समेट दो, लंबा चौड़ा नहीं खींचो, नहीं तो वो बातें भी ना हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। हाँ जी हाँ, वो यो फिर लगेगा कहाँ, वो बच्चे की तरफ योग लगा रहेगा। यहाँ आए माना यहाँ आए, इतना सुनहरा मौका दिया है बाबा ने, यहाँ सेवा के लिए हम सबको भेजा है। इस बाबा की गोद में बैठे हैं, तपस्या भूमि में बैठे हैं, वो विश्व के, वो पूरे संसार के चार महान तीर्थ यहाँ हैं, चार धाम यहाँ हैं। दादी जी जिस साधना यहाँ पर, ऐसे कर्म भूमि पर साधना की है, जिस भूमि पर इतनी साधना हुई, लंबे समय तक साधना की है, उस भूमि पर रह के हमको क्या करना चाहिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि हमारा वो पुरुषार्थ सहज नेचर हो जाए। तो ये जीवन तो आसान है, लेकिन मुश्किल हम खुद बना देते हैं। मुश्किल है नहीं है, बोझ पकड़ने की आदत, मन के ऊपर बोझ हम खुद रख देते हैं, और बोझ वाला ज्यादा चलेगा नहीं। थकेगा। तो जो भी बोझ है वो बाबा को दे देने, और ऐसा नहीं कि निकाले और दे दिए, ऐसा थोड़े नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। जो बाबा खजाना देता है उसको अंदर में भर लेना, तो वो बोझ अपने आप निकल जाएगा। अगर कोई घर का हमको संबंध में खींचता है तो उसी संबंध से बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। कोई बच्चा खींच रहा है तो बाबा को बच्चा बनाकर याद करो। पति खींच रहा है तो पति को याद करो। पतियों का पति वो तुम्हारे सामने बैठा है, बाबा कहते हैं, और उस पति को याद कर रहे हो। बाबा कहते हैं, मैं बुद्धि का ताला मैं खोलने का काम नहीं है मेरा। परसों था ना प्रश्न के उत्तर में, उसने तुम्हारा खोल दिया, तुम्हारों का खोलो। तो हमारे मन में इतनी शुभ भावनाएं, सबके प्रति इतनी शक्तिशाली शुभ भावनाएं हो जानी चाहिए कि दूसरों को हमको कहने की जरूरत ना पड़े, हमारे व्यवहारिकता से दूसरों को परिवर्तन करने का संकल्प आए, दूसरों को भी और स्वयं को भी परिवर्तन करने का, क्योंकि स्वयं की कमी कमजोरियां भी होती हैं। सारा काम पहले स्वयं के ऊपर करना है, स्वयं पर करेंगे तो दूसरों पर अपने आप ही होता जाएगा। और समय कौन सा है, अभी सुनाने का तो है ही नहीं, अभी तो केवल बस सामने वाला देख के तृप्त हो जाए। बाबा ने कहा ना, अपनी तपस्या से संतुष्ट हो, तो है ना मुरली में, आज में चार्ट चेक करो, संतुष्ट हो तपस्या से, या मन भागता है, कहीं लगाव तो नहीं है सेंटर में, मेरा सेंटर, मेरी जिम्मेवारी, मेरी जवाबदारी है, मेरे बिना ये होगा नहीं, हमने पकड़ के तो नहीं रखा हुआ है। तो जैसे जितना समय बैठते हैं डिटैच हो जाना है, उस सेंटर से भी डिटैच, उन क्लास वालों से भी डिटैच, जितना समय कम से योग में बैठते हैं ऐसे सोचना है बाबा ने पकड़ के हमको अपने पास बिठा के रखा हुआ है। वो आधा पौना घंटा भी अगर हम संस्कार बना लें तो भी अंत में हम एक्स्ट्रा मार्क से पास हो जाएंगे, नहीं तो अंत में हमको हमारी आदतें ही धोखा देंगी, हमारी आदतें हमको अदालत में जाने के लिए मजबूर कर देंगी। तो धर्मराज के रूप में ऐसा नहीं कल को सलामी भरनी जा पड़े, धर्मराज खुद सलामी करे। तो अटैचमेंट नहीं, कहीं लगाव नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। बाबा कहते तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप में ही सारा कुछ है। अर्थात ऐसा नहीं कि हमको सब काम धंधा छोड़ देना है, जो भी हम कर्म करते हैं कर्म करते हुए भी स्मृति रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें हमको बाबा पूरा याद रहेगा, लेकिन कुछ धुंधला सा ज्ञान भी याद रहे कि कराने वाला कौन है, वो करा रहा है, वो मेरा हाथ पकड़ के चला रहा है, उसकी छत्रछाया के मैं नीचे बैठा हूँ, उसने मुझे इस संसार में भेजा हुआ सेवा के लिए, मैं अवतारित आत्माएं हूँ, ट्रस्टी होकर मैं सेवा कर रहा हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है जो उसने मुझे इस सेवा के निमित्त बनाया हुआ है, वो ये मेरा सौभाग्य है जो उसने घर से ला के यहाँ सेवा के लिए खींच के लाया है। अगर थोड़ा चिंतन की धारा को हम चेंज करेंगे तो चिंता से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो बीती बातें पकड़ के रखेंगे। आज था ना स्लोगन, क्या स्लोगन था, बीती को बीती कर, बीती को बीती समझ, आगे उससे डैश लेकर आगे क्या करो, शिक्षा लेकर सावधान रहो, आगे बढ़ते चलो। तो ये हमको समय पर अगर ज्ञान याद आता है, माना बाबा की कृपा हमारे साथ में है। और एक आज बाबा ने कहा कि अब तुमको और क्या, कौन से अभ्यास बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है, अव्यक्त, क्योंकि जाना हमको वहां है। बाबा ने कहा जाना अगर वहां है तो अव्यक्त को व्यक्त में क्यों बुलाते हो, कायदा क्या है, तुम अव्यक्त बन जाओ। तो लंबे समय का हमको ये प्रैक्टिस करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी समय अनुसार जितना समय हम अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे तो वो अव्यक्त अनुभव होंगे, क्योंकि बदल रहा, सब कुछ बदल रहा है। कब वो कहा बाबा ने, 91 में, और प्रैक्टिकल में अब देख रहे हैं। और जितना जो व्यक्त में रहेगा तो संसार के आकर्षणों की तरफ आकर्षित होगा, अव्यक्त की तरफ रहेंगे तो अव्यक्त दुनिया की तरफ आकर्षण होंगे, नहीं तो ये विज्ञान के साइंस के साधन भी हमारी साधना को खंड खंड कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जो मन के मन मारा, जो मन के विचार बिखरे रहते हैं पूरा दिन में, एकाग्र होते ही नहीं है। तो सारा दिन में चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, धुन लगा देनी अंदर में, और करना हमको खुद को ही पड़ेगा। क्लासेस तो हमको सुन लेते हैं, हजारों क्लासेस सुन ली होगी, कितने महारथियों की क्लासेस सुन ली, लेकिन फिर भी हम करना किसको ही है, भोजन तो परोस दिया थाली में हमारे में, खाना किसको है कोई, वो तो ऐसा नहीं कि हमको वही मुंह में डालेगा, अच्छा मुंह डाल दे तो अंदर किसको पचाना है। तो इतना नए नए तरीके से ज्ञान के हमको अलग अलग बिंदु मिलते हैं, पुरुषार्थ की युक्तियां मिलती हैं, इसके बावजूद अगर हमारे पुरुषार्थ की उड़ान भरे नाम तो क्या कहेंगे। तो इतना सुनहरा मौका मिलता है, हमको इसको छोड़ना नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो हमको ये छोटा सा संगम युग हमको समझ मिली है अभी, जो कहते संसार में मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, तो वास्तव में वो ये वाला है, क्योंकि अभी हमको समझ मिल रही है कि भगवान का ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ रहा है। तो कहीं भी हमारी अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो, जो बाबा ने बताया ना आसक्ति हो जाती है, बाबा ने कहा चेंज करेंगे कल को, भेज देंगे इधर उधर, और किया भी था। तो हमको सबको चेक करना है, अभी तो चेंज करने वाला कोई ऐसे सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा कि होंगे चेंज, लेकिन वहां रहते हुए हमको उपराम रहने की प्रैक्टिस करनी है, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने की प्रैक्टिस करनी है, अशरीरी अवस्था बनाने की प्रैक्टिस करनी है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहने की प्रैक्टिस करनी है। लंबे समय से ये अनेक प्रैक्टिस हमको हमारे काम में आएंगी, वो संस्कार बन जाएंगे समय पर, अपने आप वो नेचुरल नेचर हो जाएगी, स्वतः हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे घरेलू काम काज करते हैं या जो भी हम यहाँ सेवा करते हैं, मुश्किल लगती है उसमें, तो याद में क्यों मुश्किल है? याद वाला सब्जेक्ट तो सबसे सहज वाला सब्जेक्ट, क्योंकि वहां तो कुछ करना ही नहीं है, वहां तो शांति के साथ बाबा के साथ बैठ जाना। सोचो जैसे हम सूक्ष्म में बैठे हैं, बाबा की गोद में से रख कर बैठे हैं, या बाबा के हाथ को हाथ पकड़ के बैठे हैं, या बाबा ने प्रधानी हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है, खाली उस सीन को देखते रहो बस, लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे इससे सकाश की किरणें निकली हैं, वो जरूरत नहीं है। विश्व कल्याणकारी बाबा बैठा है, बाप दादा दोनों बैठे हैं, वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और जो उसको कराना वो करा रहा है। लेकिन होता क्या है, हम योग करते हैं लंबे समय से तो देखते हैं इसका थोड़ा परिणाम तो निकलना चाहिए, थोड़ा तो सामने वाला को सुनाए, हाँ आपकी सकाश की किरणें मुझे पहुंची थी, तो मन को थोड़ी राहत मिलती है ना। ये अपेक्षा नहीं रखनी है, कोई भी इच्छा पुरुषार्थ के परिणाम की इच्छा रखनी नहीं है। पुरुषार्थ के परिणाम की हम इच्छा रखते ना और वो पूरी नहीं होती है, तो क्या अपने अंदर ही जैसे गिल्ट कॉन्शियस पैदा होती है कि इतने साल से इतने समय से सकाश दे रहे हैं, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, छोड़ो सकाश को। नहीं होता है ये तो हमने अज्ञान काल में भी अनुभव किया हुआ है। हम जब सेवंथ क्लास में थे तो हमको कई बार ऐसे फीलिंग आती थी चलते फिरते भी कि कोई बहुत दूर बैठ के सफेद कपड़ों वाले जैसे शक्तिशाली वाइब्रेशन दे रहे हैं, और वो ज्ञान में आने के बाद पता चला कि बहुत दूर कहाँ, यहाँ मधुबन में, और स्पष्ट रूप से वो अनुभव तक जैसे पहाड़ों पर बैठ के कोई जैसे शक्तिशाली किरणें दे रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी सकाश जो संसार के लिए जैसे ऑक्सीजन की तरह काम करती है, तो हमारी निष्फल नहीं जाती है। इसलिए हमको ये कभी भी अपने अंदर ये नहीं सोचना कि हम इतना योग कर रहे हैं पता नहीं उसका असर हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं, हर संकल्प पार सारे संसार को प्रभावित करता है, प्रकृति के पांचों तत्वों को प्रभावित करता है, जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, हर विचार हमारा पूरी सृष्टि में समा रहा है। तभी तो कहते संकल्पों ने ब्रह्मा, संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। तो हर ब्राह्मण बच्चा अपने आप में ब्रह्मा है, हर चाहे वो नेगेटिव संकल्प है चाहे पॉजिटिव संकल्प है, हर संकल्प पूरे सृष्टि को परिवर्तन कर रहा है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे खुश तो संसार खुश, तुम बच्चे दुखी तो संसार दुखी, तुम बच्चे रो रहे हो तो संसार रो रहा है, क्योंकि हम पूर्वज हैं। लेकिन हम ऊपर ऊपरी समझते हैं ठीक है बाबा बोल रहे हैं, लगता तो है नहीं ऐसे, लेकिन सचमुच ऐसे है। आप घर में देखो, परिवार है, अम्मा है, दुखी दुखी हो तो पूरे परिवार पर कुछ का असर क्या होगा? आप एक बार चेहरा परिवार को दिखा के चले जाओ तो सारा परिवार सोचता रहेगा कि नहीं सोचता रहेगा, तो असर हुआ कि नहीं हुआ? और उसी में खुशी हो तो पूरे परिवार में कितनी खुशी हो जाएगी, उस मोहल्ले में खुशी से निकलो तो सबके संकल्प कैसे चलेंगे? तो ये जो चेहरा की एक दर्पण है, इसलिए बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनैलिटी तुम्हारे सूरत और इस से स्पष्ट रूप से अनुभव होनी चाहिए, स्वयं को भी अनुभव और दूसरों को भी अनुभव। तो इतना ऊंचा जीवन है कि पवित्रता का सागर वो हमारे ऊपर ही कुर्बान हो गया है, इससे बड़ी क्या खूबी चाहिए हमको? वो शांति का सागर ही हमारी आके गोद में बैठ गया है, और इसने सारे खजाने हमको लुटा दिए हैं, वो खुद ही अपना हो गया है भाग्य विधाता, और क्या चाहिए जीवन में? तो अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे सुमान करने, उसके साथ कंबाइंड रहना है, उसके साथ जुदा होने का कोई समय ही ना हो, ऐसे एक सेकंड भी ऐसा ना जो उससे जुदा हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, बीच में बाबा मुरली ठीक से लहर चलती रहती है ना, कि थोड़ी देर में माया कोई बाबा घुसा देता है, क्योंकि अंदर में माया तो है बैठी है, क्योंकि बाबा को पता है समय और परिस्थितियां आएंगी और ही उसमें फंस जाएंगे। इसलिए कदम कदम पर सावधानी जरूरी है। तो बाबा के प्रति ऊंचे भाव, ऊंचे तो ऊंचा बाप तुमको मिला है, पिछले मुरली में था, इतनी श्रेष्ठ सीट पर बिठा रहा है तो सीट छोड़ क्यों देते हो, आसन पर बिठा रहा है, आसन के चारों कोने बराबर होने चाहिए, एक भी कोना ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी पाया ऐसा नहीं होना चाहिए पिछले झंडे के मुरली में था कि नहीं, चारों सप्ताह के। तो ये ब्राह्मण जीवन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी हमारी रग रग में झलकनी चाहिए। जितना हम डिटैच रहेंगे, अशरीर बनने का अभ्यास करेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, सेवा में बिजी रहेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, तो उड़ते रहेंगे जीवन में। आप एक ही दिन करके देखो, एक दिन के आधे दिन करके देखो कि आधा दिन कोई व्यर्थ में जाना ही नहीं है, व्यर्थ किसी के प्रति बोलना ही नहीं है, वो आधे दिन की बहुत खुशी होगी। छोटे छोटे लक्ष्य रखें, छोटे छोटे लक्ष्य हमको बड़ी तरफ मंजिल की तरफ ले जाते हैं, नहीं तो हम पहले बड़ा लक्ष्य रखते हैं कि आज से मैं व्यर्थ सोचूंगा ही नहीं, लेकिन जैसे गेट बाहर निकलेंगे ना वहीं चालू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से फोन आ जाएगा, माया तो सुन रही है, बाबा कहते ना वो भी कान लगा के सुनती रहती है। आज बाबा ने कहा ना, तुम माया क्या हो, माया जीत, माया पति हो, माया का रंग तो नहीं लग जाता है, मेरा अर्थात मैला होना, मेरा अर्थात बोझ, तेरा अर्थात तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तो माया तो अलग अलग रूप से आएगी, लेकिन बाबा के साथ हम जितना समय रहेंगे, उसको अपना बना के रखेंगे, उसकी ज्ञान से प्यार करके रखेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, तो स्वतः माया हमारे से दूर रहेगी, माया के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा हम खिड़की खुली रखते तो माया उधर से घुसेगी, अर्थात थोड़ा सा भी हम लूज कनेक्शन रखते हैं तो माया के आने की बहुत मार्जिन हो जाती है। इसलिए बाबा के इतने सारे ढेर सारे पॉइंट हैं, तो उसको जीवन में मुरली में जो भी पॉइंट मिलते हैं, जितने याद रहें, बार बार उसको रिकॉल करते रहो, बुद्धि में रिवाइज करते रहो, बुद्धि को बुद्धि रूपी बर्तन जो ना उसको मांजना है, अच्छी तरह सफाई हो जाएगी उसकी। खाली योग से सफाई नहीं होगी उसकी, ज्ञान के साथ योग करेंगे तो उसकी सफाई होगी। उसमें बिम लगाया नहीं और खाली उसमें हम वो पोचा फेर ही रहे हैं तो बर्तन साफ होगा? तो ज्ञान और योग दोनों चाहिए तो बुद्धि रूपी बर्तन साफ होगा, खाली योग से भी नहीं होगा, ज्ञान और योग दोनों चाहिए। योग के बाबा ने क्या कहा था, सबसे बड़ा क्या है योग, पिछले संडे की मुरली में है? योग सबसे बड़ा डैश है विज्ञान, और एक सबसे बड़ा विज्ञान और भी बोला था बाबा ने, क्या साइलेंस और सेकंड में फुल स्टॉप, ये सबसे बड़ा विज्ञान है। तो बाबा ने हमारे कितने सब्जेक्ट कैसा विज्ञान बना, संसार का विज्ञान क्या करता है, हमारा विज्ञान क्या कर रहा है, एक सेकंड में फुल स्टॉप, जो भी सारे दिन की बातें हुई छोड़ देने की, बीती को बिंदी करो और फुल स्टॉप, करना पड़ेगा ये। क्लास कराने वाला क्लास करा के चला जाएगा, बाबा सुनाने वाला सुना के चला जाएगा, करना तो अपने को पड़ेगा। हाँ, वो शक्ति तब देगा जब उसके महावाक्यों को हम उतना महत्वपूर्ण तरीके से अपने दिल के साथ लगा के रखेंगे, कदम कदम पर उसकी सावधानी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ना, बीती को बीती कर शिक्षा लो, उसे सावधानी लो, ठीक है जो हो गया हो गया, उसके बारे में सोचना नहीं है। ऐसे आज ही समझो कोई व्यर्थ हो गया, अब हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी तो हम सावधान हो सकते ना, आगे इससे नहीं करेंगे, जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन सावधान तो सावधानी तो ले सकते ना, उससे हम पाठ तो पढ़ सकते ना, आगे बढ़ने के लिए तो हम सीख सकते ना कि इससे हमको कितना नुकसान हुआ, हम आगे नहीं करें अभी तो। हमको जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, कुछ भी होगा, बीती को बीती, रोज चैप्टर क्लोज कर देने का। इसलिए बाबा क्या कहते, रोज रात मुझे अपना चार्ट दे के सो जाओ बाबा की गोद में, तो रोज गुड नाइट जरूर करना बाबा को, भले 10-15 मिनट करो, लेकिन अच्छा प्यार से, सारे दिन में दो भी दिनचर्या हुई है, एक दर बुद्धि में शॉर्टकट में उसको रिवाइज कर देने का, क्या क्या हुआ, और सब बाबा के आगे रख देने का। जैसे दो माताएं आती थी, तो एक माता दूसरी को पूछती है, बाबा को चार्ट कैसे देना होता है? तो दूसरी माता कहती है, बहुत आसान है, मैं तो बाबा के कमरे में जाती हूँ और आत्मा को निकाल के रखती हूँ, बाबा ये रही आत्मा, जो करना कर लो आप। कितना सहज काम है, देखो बाबा भी मुस्कुराता होगा। कितना आसान है चार्ट देना, बताओ, है कि नहीं? योग हमारा ऐसे होना चाहिए, है ना, शरीर उतार के इधर रखा, आत्मा इधर रखी, बस अब जो करना करते रहो, तुम्हारा काम है। तो ये ज्ञान कितना रमणीक है। तो इसको रोचक तरीके से अपने जीवन में देखो, अनपढ़ माता वो कितना कितनी अच्छी सोच है उनकी। तो बाबा भी वो कैसे ऐसे बोली वाली माताओं के ऊपर कुर्बान जाता है, फिदा हो जाता है, है ना। तो हमारा जीवन ब्राह्मण जीवन है, तपस्वी जीवन है, सफल तपस्वी जीवन है। जीवन में परिस्थिति आती है, बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, घबराना नहीं है, वो भी हमको परिपक्व करने के लिए आ रहे हैं। उनको बीती सो बीती कर देना, आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे हम आगे निकल जाएं, उसको पकड़ के नहीं रखना है। ठीक है, अगर उनमें हम आ रही है सफलता भी हुई है तो भी छोड़ देना है, कोई बात नहीं, फिर सही, क्योंकि भगवान ने स्वयं हमारे मस्तक पर सफलता का तिलक लगाया हुआ है। कल्प कल्प के तुम विजयी आत्माएं हो, विजयी रत्न हो, को मनुष्य थोड़ा नहीं कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहा है, तो क्यों विजय नहीं होगी। तो सफलता तो बाबा की तुम्हारी परछाई की तरह है, परछाई की तरह पीछे आएगी, जिसका साथ ही भगवान क्या करेगा आंधी और तूफान। लेकिन थोड़ा हमको धैर्यता इस ज्ञान मार्ग में धैर्यता की बहुत जरूरत है। बाबा धैर्यता का सागर भी है, एक मुरली में बाबा ने बताया था ना, बाबा मदद का सागर भी है और धैर्यता का सागर भी, कितना धैर्य है उसको। लेकिन हमें अपने बदलाव पर इतना धैर्य होता नहीं है। ठीक है, आज तक जो हो गया उसको छोड़ देने का, एक फिर नई से नई यात्रा शुरू कर देनी, रोज आंख खुलते ही सोचना है कि आज से मेरी नई यात्रा शुरू होने जा रही है, कल क्या हुआ उसको छोड़ो, उस पर मिट्टी डाल दो, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आज से मेरा ब्राह्मण जन्म हुआ है, आज मुझे नया जन्म मिला है, आज मैं अभी ऊपर से अवतरित हुआ हूँ, भगवान भी अवतरित हुआ ऊपर से मुझे यहाँ तराशने के लिए, मेरे अंदर जो देवत्वों के संस्कार शिपे पड़े हैं उनको जैसे बाहर निकालने के लिए, जैसे वो मुझे श्रृंगार रहा कर, जैसे वो मेरे से बातें करने के लिए आया हुआ है, वो केवल मेरे लिए आया हुआ है, उसकी नज़र केवल मेरे ऊपर ही पड़ी है, तो उसके साथ बातें करनी है, नज़दीकियाँ बढ़ानी है, रिश्ता मन को उसके साथ जैसे प्रगाढ़ करना है, एकदम पक्का रिश्ता करना, मजबूत करना है। नहीं तो रिश्तों में क्या आता है, दूरियां क्यों होती है, जब आपस में मिलते नहीं है, लंबे समय के बाद मिलते हैं और फिर इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन बाबा से हम निरंतरता हमारी अगर बनी रहेगी तो रिश्ता हमारा मजबूत होता जाएगा, तो माया हमारे मन में प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। तो तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, तपस्या अर्थात एक ही लगन में मगन रहना, तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, तपस्या अर्थात कोई बेकारों की टचिंग ना हो, स्वप्न में भी टच ना हो, लेकिन लंबे समय के पुरुषार्थ, क्योंकि स्वप्न में टच होना अर्थात सोच के हम ऐसे घबरा जाएंगे उसको, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, घबराना नहीं है इसमें, भगवान ने कहा तो वो होगा, निश्चित रूप से होगा। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, पर्सनैलिटी अर्थात छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अर्थात विश्व के लिए हमारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है, तो छोटी मोटी बातों में टाइम देना हमें शोभता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जितना मनन चिंतन करेंगे, मुरली के ऊपर ध्यान देंगे, तो निरंतर हमारी प्रगति होती रहेगी। ओम शांति।
बाबा।